ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. பரமாதரணிய தாதி ஜானகி ஹமேஷா தீன் பார் ஓம் சாந்தி புலவாதி ஹை, ஆர் யே தீனோ பார் கே ஓம் சாந்தி கா மத்லப் பதாதி ஹை கி மே கௌன், மேரா கௌன், ஆர் முஜே க்யா கர்னா ஹை. தோ ஆஜ் கா ஜோ விஷய ஹை ரிட்டர்ன் ஜர்னி, தோ முஜே க்யா கர்னா ஹை. ஆர் யே ஸ்மிருதி அகர் ஹமேஷா நிரந்தர் அப்னே அந்தர் ரஹே, தோ ஷாயத் ஹம் பஹுத் அச்சி தயாரி அப்னி கர் சகேங்கே. க்யூங்கி ரிட்டர்ன் ஜர்னி கஹாங் கி, கஹாங் கி ரிட்டர்ன் ஜர்னி ஹை ஹமாரி, ஹா கஹாங் கி ரிட்டர்ன் ஜர்னி ஹை, அப்னே கர் கி, ஆர் ஆர் சுகதாம் கி, ஹை நா? தோ ரிட்டர்ன் ஜர்னி பர் ஹை ஹம். தோ தோனோ கி தயாரி ஹமே அப்னே ஆப் மே கர்னி ஹோகி. பரம்தாம் கி ரிட்டர்ன் ஜர்னி பர் ஹை, தோ உஸ்கி தயாரி க்யா ஹோகி? ஆர் ஃபிர் அப்னே சுகதாம் மே பி ஜப் ஜானா ஹை உஸ்கே பாத், தோ உஸ்கி தயாரி க்யா ஹோகி? ஜிஸ் தர கோய் வியக்தி சோச்தா ஹை கி மதுபன் ஜாயங்கே, ஆர் மதுபன் கே பாத் கஹீ கோய் லௌகிக் மே ஷாதி ஹோதி ஹை ஆர் நஸ்தீக் ஹை, தோ சோச்தே வஹா சே வஹா சலே ஜாயங்கே ஆர் ஷாதி அட்டெண்ட் கர்கே ஆ ஜாயங்கே. தோ தோனோ கி தயாரி அப்னி அப்னி ஹோதி ஹை. ஷாதி மே சஃபேத் கப்டே நஹீ பஹனேங்கே ஆப், ஆர் மதுபன் மே சஜ தஜ கர்கே நஹீ பைட்டேங்கே யஹாம் பர் கி சலோ வஹீ ஷாதி கே கப்டே மதுபன் மே பஹன்லேங்கே ஆர் ஃபிர் வஹா சே வஹா ஜாயங்கே துபாரா பஹன்லேங்கே. உஸ்மே க்யா ஹை? மதுபன் மே பி சப் தேகே ஹமே ஷ்ரிங்காரே ஹுவே ஸ்வரூப் மே நஹீ. தோனோ ஜகஹ அகர் ஜானா ஹை ஏக் ஹி ட்ரிப் மே, தோ தோனோ கி அட்டேச்சி அப்னி அப்னி பனாயேங்கே, ஆப் அலக் அலக் ரக்கேங்கே. தீக் இசி தர ஹமே பி அப்னே கர் ஜானா ஹை ஆர் வஹா சே ஹி ஆகே சுக்தாம் ஜானா ஹை. யே தோ நஹீ கி வாபஸ் சங்கம் யுக் பர் ஆகர் கே ஃபிர் சுக்தாம் மே ஜாயேங்கே, நஹீ. தோ இசிலியே ஏக் ஹி பார் மே தோனோ ஜர்னி கி யா தோனோ ஸ்தான் கி தயாரி ஹமே கர்னி ஹோங்கி. க்யூங்கி ஜேசே தோ சார் தின் பஹலே பாபா நே கஹா கி ஹமாரே தோ சிவாலய ஹை, பரம்தாம் நிராகார் சிவாலய ஹை, தோ சத்யுக் ஹமாரா சாகார் சிவாலய ஹை. தோ இசி தர ஜப் தோனோ ஸ்தான் ஹமாரே அப்னே ஹி ஹை ஆர் ஜானா ஹி ஹை ஹமே, தோ தோனோ கி தயாரி ஹமே பஹுத் அச்சே சே கர்னி ஹை. தோ க்யா தயாரி கரேங்கே, க்யா தயாரி கர்னி ஹோகி தோனோ ஸ்தான் பர் ஜானே கே லியே? தோனோ கா பேக் பேகேஜ் அலக் பனானா ஹை, தோ க்யா க்யா தயாரி கரேங்கே? கை பார் கை லோக் சோச்தே ஹை கி பாய் பஸ் ஏக்தம் நிராகார ஸ்திதி மே ஹி ஜானா ஹை, பரம்தாம் ஜானா ஹை நா பஹலே, தோ தோ உஸ்கி தயாரி பஹலே கர் தேதே ஹை. நீ ஆஜ ஜே பாபா நே பஹுத் அச்சி பாத் முரளி மே கஹி கி துமே பவித்ர பன்னா ஹை, க்யூங்கி தோனோ துனியா கே லியே பவித்ரதா சாஹியே. परम धाम के लिए भी आत्मा पावन चाहिए। तो नई सत्युगी दुनिया में भी जाना है तो हमारा आदि स्वरूप भी पवित्र स्वरूप है, तो इसीलिए वो तैयारी हमें यहां से करनी होगी। और उसके लिए यहां से, यहां जो फैलावा किया हुआ है उसको समेटना जरूरी है। जिस तरह कोई व्यक्ति अगर विदेश में सेटल होना चाहता है और उसकी सारी तैयारी हो जाए कि अब भी परमानेंट यहां छोड़ करके विदेश में सेटल हो जाना है, तो यहां जरूर है समेटना चालू करेगा, क्योंकि भाई वहां चले जाएंगे और फिर वहां से यहां कोई वापस आना नहीं है, आएंगे तो भी थोड़े समय के लिए आकर के चले जाएंगे, तो घर मकान आदि जो कुछ भी है उसको निकालना चालू करेगा, समेटना। जो ले जाने वाली चीजें हैं वो ले जाएंगे, बाकी तो वहां मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन यहां की चीजें निकाल देना पड़ेगा। और इसलिए घर की एक एक बड़ी बड़ी जो सामग्रियां है उसको छोड़ना चालू करेगा या बेचना चालू करेगा। भाई मकान को बेचेंगे, जो फर्नीचर है उसको बेचना चालू करेगा, एक एक चीज, या तो मकान के साथ ही सब चला जाए। और उसी समय मान लो कि कोई आकर के कहे कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, बड़े सस्ते दाम में मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे? अरे क्या करना, अभी तो वहां ही जाकर के रहना है, यहां तो आना नहीं, तो प्रॉपर्टी यहां खरीद के क्या करना है, यही कहेंगे ना। ठीक इसी तरह अब यहां इस दुनिया की बढ़िया से बढ़िया चीज भी क्यों ना हो, लेकिन जब हम रिटर्न जर्नी पर है तो समेटना ही है। अगर समेटेंगे नहीं फिर भी यहां फैलावा करते जाएंगे, तो फिर वो समय जब आएगा तो क्या हाल होगा। जैसे एक व्यक्ति सारी जिंदगी धन कमाता रहा, धन 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 इकट्ठा करना है बच्चों के लिए, पोतों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, धन 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 करता रहा, और लास्ट में हार्ट अटैक आया, शरीर छूटा और उसके बेटे ने कार्ड भेजा सबको, मेरे पिता का निधन हो गया। धन धन करता रहा और लास्ट में निधन निधन हो गया उसका, है ना। वो धन किस काम का आया जो निधन होकर के ही जाना पड़ा उसको। अरे हर आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर आई है उसके कर्म अनुसार, तुम पुत्र पोत्र के लिए क्या इकट्ठा करेगा उसके भाग्य में अगर नहीं है, उसने पिछले जन्म में ऐसे अच्छे कर्म ही नहीं किए हैं, तो तुमने इकट्ठा किया तो भी कहीं ना कहीं उड़ा देगा, खत्म कर दे। उसके जो नसीब में भोगने के हिसाब से उसको सुख मिले उसके हिसाब से जो इकट्ठा किया था वो तो कोई काम का नहीं है। हर आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर आती है, इसीलिए दुनिया में कहा जाता है कि माता पिता जन्म दे सकते हैं, भाग्य हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से ही लेकर आती है। आप कितना भी इकट्ठे करके जाओ अगर उसके नसीब में नहीं है, कहां चोर लूट जाएंगे, डाका डाल देंगे, रास्ते पर आ जाएगा, क्या काम का। इसलिए कहां सारा समय धन 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 के पीछे चला गया उसका, जब भी उसको कहा कि भाई थोड़ा समय योग कर ले, हम ये भट्ठी कर लो, ये कर लो, कहा नहीं, धन कमाने का है, अभी तो सीजन है, अभी तो ये है, और फिर निधन होकर के जब चला गया आगे की यात्रा पर, तो जो कमाई लेकर जा सकता था वो कमाई भी नहीं लिया, और जो नहीं लेके जा सकता था उसी में ही श्वास लगाए रहे और निधन हो गया। तो इसलिए तैयारी ऐसी करनी है हमें कि कल को हमारे लिए कोई ये ना कहे कि हाँ भाई देखो सारा समय धन 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 करता रहा और लास्ट में तो निधन होके ही जाना पड़ा उसको। نہ یہ کمائی کیا، اسپرچل کمائی بھی نہیں ہوئی، روحانی کمائی بھی نہیں ہوئی، اور وہ جسمانی کمائی تو کوئی کام کی نہیں رہی. تو سمیٹنا ضروری ہے. پریکٹیکل اگر ہم دیکھیں تو باپ دادا نے بھی کتنا سمیٹنا شروع کیا. دادیاں جب تھی ہمارے پاس میں تو کہتے تھے باپ دادا جب آتے تھے تو اس سمے پانڈو بھون کے بابا کے کمرے میں بابا آتا تھا دادی کے تن میں، اور گھنٹوں، اس سمے تو تھوڑے سے بچے ہوتے تھے، گھنٹوں بابا سب کو سمے دیتا تھا، ایک ایک کے ساتھ بھوجن کرتا تھا، ایک ایک کے ساتھ میں بابا ان کو کھلاتا تھا، وہ بابا کو کھلاتے تھے، کتنا وہ میٹنگ تھی. اس کے بعد جیسے بچے بڑھتے گئے تو ہسٹری ہال میں آنا چالو کیا. مجھے یاد ہے ہم نے بھی پہلی ملاقات جب بابا سے کیا تھا تو ہسٹری ہال میں ہی کیا تھا، ہے نا؟ اور ہسٹری ہال میں وہ تھوڑے سے بچے ہوتے تھے، بابا گھنٹوں ملتے تھے، بابا کے ساتھ ہی راتری کا برہما بھوجن ہوتا تھا. اور اس کے بعد جیسے بڑھتے گئے بچے تو میڈیٹیشن ہال، اس کے بعد اوم شانتی بھون. تو جو بابا آلٹرنیٹ ڈے پر آتا تھا پہلے، اس کے بعد 15 دن میں ایک بار آنا شروع کر دیا، ہے نا، یا ہفتے میں ایک بار آنا شروع کیا، اس کے بعد 15 دن میں ایک بار آنا شروع ہوا. اور اس سمے بابا جو ایک ایک سے پرسنل ملتے تھے، اس کے بعد گروپ گروپ ملنا چالو کیا سینٹر وائز، اس کے بعد زون وائز ملنا چالو کیا، اور نیچے جب شانتی ون میں آنا شروع کیا تو بس اکٹھا ایک بار بابا پہلے پوری پوری رات بیٹھتا تھا، ایک ایک گروپ سے ملتا تھا، اور پھر یہاں شانتی ون میں 10 بجے تک 12 بجے تک میکسیمم بابا. تو بابا نے بھی سمیٹنا شروع کیا تھا، اور سمیٹتے 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 اب کیا ہو گیا، سمیٹ لیا نا بابا نے. یہ سمے کا سب سے بڑا اشارہ ہے کہ جب بھگوان نے سمیٹ لیا تو وہ سمے کتنا نزدیک ہوگا، سوچنے کی بات ہے. تبھی تو بھگوان نے سمیٹ لیا. اور بھگوان نے سمیٹنے کے بعد بھی اگر ہم نے وہ اشارہ پکڑا نہیں یا سمجھا نہیں، اور ابھی تک بھی ہم پھیلاوے میں جا رہے ہیں، وستار میں جا رہے ہیں سار میں جانے کے بجائے، تو کیا ہوگا؟ پھر ہم یہ نہ کہے کہ ارے ہم نے تو سمجھا ہی نہیں تھا کہ اتنا کم سمے رہ گیا ہے، ہم تو سوچتے تھے اتنا سال باقی ہے، ابھی 100 سال میں تو اتنے سال باقی ہے، اسی آدھار سے چلتے رہے. لیکن ایک غلط فہمی تھی کہ اتنے سال باقی ہے. تو اسی لیے جب بھگوان نے سمیٹنا شروع کر دیا تو یہ سب سے بڑا سمے کا اشارہ ہے کہ اب واپس جانے کی ہماری تیاری کتنی پرسنٹیج کی ہو جانی چاہیے. اور کتنے پرسنٹیج کی ہو جانے کے لیے، تاکہ ہم نشچنت رہے آگے کے سفر کے لیے. یہ نہیں کہ انتیم گھڑی آ جائے اور ہم سوچے ارے میں نے تو کچھ تیاری ہی نہیں کیا تھا. آپ جب مدھوبن آتے ہو تو اپنی ریٹرن ٹکٹ لے کر کے آتے ہیں نا، اور ریٹرن ٹکٹ ہے آپ کے پاس تو نشچنت ہو کر کے ہر کلاس اٹینڈ کرتے ہیں. جس کے پاس ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے، نہیں ملی تھی، یہاں کرانا ہے تتکال میں، لائن میں کھڑا رہنا ہے، دیکھنا ہے ملا کہ نہیں ملا، روز وہاں چکر کاٹتے رہنا، سٹریس کی بات نہیں ہے. تو اسی لیے پروشارتھ میں بھی جتنا ہم اپنے آپ کو سمیٹتے جائیں گے، اس ستھتی کو بناتے جائیں گے، تو نشچنت رہنا سہج ہو جائے گا. نہیں تو پھر لاسٹ مومنٹ بہت ٹینشن میں بتانا پڑے گا. کئی بار کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ارے یہ پرستھتی ہے، ये परिस्थिति समाप्त हो जाए तो फिर बाबा को इतना अच्छे से याद करेंगे, इतना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ये जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी पूरा कर लेने के बाद हम पुरुषार्थ में लग जाएंगे, उसके बाद बस तीव्र पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे। ये बीमारी बैठते तो है योग में, लेकिन यहाँ दर्द होता है, वहां दर्द होता है, ये दर्द होता है, बस बाबा ये दर्द अगर खत्म कर देना फिर तो मैं अच्छे से पुरुषार्थ करने लग जाऊं। लेकिन सोचने की बात है कि बाबा को याद करेंगे तब दर्द खत्म होगा, या दर्द खत्म होगा तब बाबा को याद करेंगे, क्या करेंगे? कहीं हम उल्टा हिसाब तो नहीं लगा रहे हैं? बाबा ने हम बच्चों को ये गारंटी किया है कि बच्चे तुम याद की मस्ती में रहो तो कर्म भोग भी चुकतू हो जाएगा। हम सोचते कर्म भोग चुकतू हो जाए फिर बाबा को याद करे, ये नहीं होगा। ये परिस्थिति समाप्त तो हो जाए फिर हम बाबा को याद करेंगे, बहुत तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन वो परिस्थिति या वो विघन बाबा की याद से विघन विनाशक बनेंगे, या विघन विनाश होगा फिर बाबा को याद करेंगे? कहीं उल्टा हिसाब तो नहीं लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए जिस पर एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है या पैदल भी अगर जा रहा है तो साइड सीन तो आती रहेगी ना। हम कहें ये साइड सीन समाप्त तो हो फिर मैं आगे बढ़ूं, चलने वाला कौन है, हम हैं या वो साइड सीन है? कौन चल रहा है? हम चलेंगे तो साइड सीन चली जाएंगी, हम खड़े हो जाएंगे और कहेंगे साइड सीन जाए फिर मैं आगे बढ़ूं, ये तो उल्टा हिसाब हो गया ना। तो रिटर्न जर्नी पर हैं हम, तो साइड सीन की परवाह मुझे नहीं करना है, मुझे चलते जाना है, पुरुषार्थ में मुझे आगे बढ़ते जाना है। आज सवेरे ही बहन जी कह रही थी कि आए हैं यहाँ क्लास करने के लिए, लेकिन अगर बुद्धि योग बाहर में ही रहा कि पुत्र पोत्रों के लिए ये ले जाना है, वो ले जाना है, थोड़ा शॉपिंग कर ले, तो यहाँ आकर के भी अगर तैयारी नहीं की, वहां तो होनी ही नहीं है उस जंजाल के अंदर, तो तभी तो यहाँ आए, लेकिन यहाँ आकर के भी उन्हीं जंजाल में रहे तो तैयारी कब करनी है, कहाँ करनी है? बाबा ने इतनी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी दिया है कि जो साल में मठिये के हिसाब से या ये मिलन के हिसाब से भी हम इकट्ठा होते हैं, तो संगठन में जो एक पावर मिलती है और जिस पावर से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, वो अगर यहाँ नहीं कर पाए तो फिर अकेले में कब करेंगे, वो तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए संगठन का बेनिफिट तो हम ले लें, क्योंकि वो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है और उस वाइब्रेशन में हम बैठ जाते हैं तो हम भी अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बाबा ने हम बच्चों को दिया है, लेकिन आज 17,000 आने के बाद भी क्लास में कितने हजार बैठे हैं, प्रैक्टिकल अगर देखो 5,000-6,000 से ज्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो बाकी 10,000 कहाँ है, है ना? कल मुझे एक ग्रुप मिला, ग्रुप ने आकर के ऐसे ही सामने हो गए, कहा दीदी हम है ना आज उदयपुर घूम के आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रही, देखती रही कि यहाँ बाबा के घर में आए हैं या उदयपुर घूमने आए हैं, किसके लिए आए हैं। तो यहाँ भी अगर तैयारी नहीं की, मना अभी बुद्धि योग कहाँ घूम रहा है हमारा, जहाँ बाबा कहते हैं अभी समेटना चालू करो, भगवान ने इशारा दे दिया, उसने समेटना चालू कर दिया, और हम समेटने के बजाय हमारी बुद्धि इधर उधर घूमती रही है, तो हम रिटर्न जर्नी की तैयारी कब करेंगे? इसीलिए ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है کہ اگر ریٹرن جرنی پر ہوں میں تو میری تیاری کیا کیا ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے ایک سمجھدار ویکتی یاترا پر جانے کے لیے سب کچھ کام کی چیزیں رکھ دیتا ہے، یہ نہیں کہ پھر کہے ارے یہ تو بھول ہی گئے ہم لانا، یہ تو رہ ہی گیا ہمارا، ہے نا. دنیا میں پھر بھی جرنی پر جاتے ہیں تو بھائی صابن پیسٹ آدی جو بھی چھوٹ گیا تو لے لیتے ہیں، لیکن یہ ریٹرن جرنی کی تیاری میں اگر کہیں چوک ہو گئی تو باقی آگے کیا ملنے والا ہے؟ آگے کچھ نہیں ملنے والا ہے. تو جس طرح بابا کہتے ہیں ابھی سمیٹنا ہے، مانا جیسے حلوہ تیار ہو جاتا ہے تو کنارا چھوڑ دینا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہم بھی بے حد کی ویراگیہ ورتی کو کہاں تک دھارن کر چکے ہیں. یہ پہلی تیاری ہے کہ اب حلوہ کنارا چھوڑ دینا چاہیے. لیکن کنارا چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرہست ویوہار میں رہتے ہوئے لوگوں سے ہمیں بولنا ہی بند کر دینا ہے. نہیں، ہم ستیوگی آتمائیں ہیں جو سنگھٹن میں رہنا جانتی ہے، ایک دوسرے سے سنسکاروں کی راس ملن کرنا جانتی ہے، وہاں راس کرنا ہے ہمیں تو وہ راس کے سنسکار بھی تو یہاں. تو دونوں چیز کا بیلنس، ایک طرف کنارا کس سے، ویکتیوں سے نہیں، ویکتیوں سے نبھانا ضرور ہے لیکن اتنا اٹیچمنٹ بھی نہ ہو جو اسی میں پھنس جائے. تو ڈیٹیچمنٹ اور نبھانا، یہ دونوں کا بیلنس، کیونکہ ہم خالی مکتی دھام میں نہیں جیون مکتی دھام میں بھی جا رہے ہیں. اسی لیے ماما کہتے ہیں ایک آنکھ میں مکتی تو دوسری آنکھ میں جیون مکتی. تو دونوں کے سنسکار ابھی سے ہمیں دھارن کرنے ہیں. ویوہارک کشلتا بھی ہو، کیونکہ جیون مکتی دھام میں پیار، مٹھاس، سنسکار ملن، نمرتا، ستیتا، پویترتا، یہ سدگن بھی ہے ستیوگ کے لیے. تو اس کی تیاری، اس کے جیور کے سیٹ تیار رکھنے ہیں. بابا کی ایک مرلی مجھے یاد آتی ہے، بابا نے کہا ہر روز الگ الگ سیٹ پہنو، الگ الگ جیورات کے سیٹ پہنو، کون سے ستھول نہیں، لیکن کبھی سنتشتتا کا جویلری کا سیٹ پہنو، کبھی مدھورتا کے سیٹ پہنو، آنکھیں دیکھے تو بھی مدھورتا والی باتیں، بولے تو بھی مدھور بول بولے، سنے تو بھی مدھورتا والے شبد سنے، کوئی کتنا بھی کڑوا بول رہا ہو تو بھی مجھے مدھورتا اس میں سے لینی ہے نا. تو ویوہارک کشلتا میں یہ سدگن بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی جیون مکتی دھام کے سنسکار ہے. تو اس کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کرنی ہے. اور پرم دھام میں کیونکہ میں اکیلی، میں اور میرا بابا، دوسرا نہ کوئی، وہ وہاں کی استھتی ہے. تو جب ہم یوگ میں بیٹھتے ہیں، جب ہم اپنے آدھیاتمک یاترا پر ہے تو اس سمے مدھوبن آنا مانا آدھیاتمک یاترا پر آئے نا، تو یہاں آدھیاتمک یاترا پر میں اور میرا بابا، دوسرا نہ کوئی. پھر بدھی گھر کے طرف نہیں ہونی چاہیے، پتر کے لیے یہ لے لے وے، پوتروں کے لیے یہ لے لے وے، دوتروں کے لیے یہ لے لے وے، یہ یاترا نہیں ہے. تو اسی لیے دونوں جگہ کی یاترا کے سنسکار، جب آپ وہاں ہے یہاں ویوہارک کشلتا ضرور ہونی چاہیے، لیکن جب وہاں سے یہاں آئے ہیں تو پھر میں اور میرا بابا، تیسرا اندر بیچ میں دوسرا کوئی بھی آنا نہیں چاہیے. یہ سوابھاوکتا ہماری سنسکاروں میں، جب ہماری سنسکاروں میں آ جائیں گی تو ہم نے دونوں جگہ کی تیاری کرنا شروع کیا. تو بے حد کی ویراگ ورتی بھی ہو تو ساتھ میں بابا کہتے راج رشی بھی ہو، ہے نا، رشی بھی ہے लेकिन राजा भी है, तो राजाई संस्कारों को भी यहाँ धारण करने, तो ऋषि के संस्कार को भी यहीं धारण करने हैं। तो राजा भी है, ऋषि भी है, न्यारा और प्यारा भी रहना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति भी हो, ये परमधाम के संस्कार हैं। लेकिन सतयुग के संस्कार जो है वो भी यहाँ ही धारण करने। कई बार ब्राह्मणों में ये देखा गया, कोई एक तरफ हो जाता है, या सतयुगी संस्कार के तरफ ही हो जाता है या परमधाम के संस्कार। अरे बिना परमधाम जाए सतयुग में डायरेक्ट जाने वाले हैं क्या? तो परमधाम के संस्कार तो पहले चाहिए ना, फिर सतयुगी संस्कार भी धारण करने, दोनों रिटर्न जर्नी पर है। तो इसीलिए दोनों का पुरुषार्थ साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ चलना ही चाहिए हमारी लाइफ में। और ये लाइफ में अगर ये नहीं हुआ तो फिर कब करेंगे, फिर कब करेंगे? दूसरी बात कि जब रिटर्न जर्नी पर है तो जमा का खाता इतना भरपूर होना चाहिए, जमा का खाता। जैसे किसी को पूछा जाए मधुबन चलेंगे, हाँ चलेंगे, जरूर चलेंगे, लेकिन मधुबन आने के लिए भाड़ा का टिकट का पैसा भी नहीं है तो कैसे चलेंगे? कम से कम इतना तो जमा किया हो कि यहाँ मधुबन तक की टिकट तो निकाल सके। मधुबन में आएंगे तो कम से कम यहाँ अपना भाग्य बनाने के लिए कुछ तो कर सकेंगे, इतना तो हो हमारे पास। चलो टिकट का पैसा यहाँ तो इस दुनिया में तो कोई भी दे देगा, लेकिन जब यहाँ से रिटर्न जर्नी पर हम है तो मेरे पास इतना जमा है, कौन सा जमा का खाता अपना तैयार करना है और कितना चाहिए? वो तीन जमा के खाते के बारे में बाबा हमेशा बताता है। पहला जमा का खाता स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध जमा होना चाहिए। स्व पुरुषार्थ किसको कहा? स्व पुरुषार्थ किसको कहा? तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक श्रीमत के आधार पर जो कर्म किए वो स्व पुरुषार्थ हो गया। श्रीमत के आधार पर हर कर्म वो स्व पुरुषार्थ। अमृत वेले के श्रीमत बाबा ने दिया, अमृत वेले हम उठे, बाबा को प्यार से याद किया, ये स्व पुरुषार्थ है। बाबा ने मुरली चलाई, वो मुरली का जो अध्ययन प्यार से हमने किया, एक एक बात को हमने धारण किया अपने जीवन के अंदर, या जो बाबा ने मुरली के अंदर बातें कही उन बातों को समाते गए अंदर में और प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं में उसको लाते गए, ये स्व पुरुषार्थ है ना? जहां सिर्फ मेरा कनेक्शन है, अमृत वेले का कनेक्शन सिर्फ मेरा है, जहां मुझे अपने जमा करना है, तो उससे प्रारब्ध की जमा का खाता, तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध को जमा करना है ना। दूसरा है कि सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना। बाबा ने इसीलिए हम बच्चों को कहा, बच्चे स्व पुरुषार्थ और सेवा अंत घड़ी तक चलनी चाहिए। सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना, क्योंकि ये पुण्य का खाता भी बहुत, जो हमने किया है वो पुण्य हमारा ही साथ में चलने वाला है। तो स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता भी साथ में चलना है, सेवा जो किया है तन मन धन जन संबंध संपर्क मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास शक्ति, जिस भी तरीके से सेवा किया वो सेवा हमारा पुण्य का खाता बढ़ाती है। कितने तरीके से सेवा कर सकते हैं, जितना सफल किया, समय श्वास शक्ति सफल किया, उतनी सफलता हमारे पुण्य के खाते में भरती जाएगी। جمع ہوتی جائے گی. کیوں یہ سیوا بھی کرنی ہے ہمیں؟ کیونکہ یہ کہاں کام آنا ہے؟ تو سو پروشارتھ دوارا جو پراربدھ کا کھاتا ہے اسی کے آدھار پر ستیوگ اور تریتا یوگ دو یوگ چلے گا. ستیوگ اور تریتا یوگ کے, ستیوگ کے 8 جنم, تریتا کے 12 جنم, 20 جنم ہمیں چلانا ہے. تو سو پروشارتھ دوارا جو پراربدھ جمع کیا اسی سے, اس لیے بابا نے کئی بار ہم بچوں کو مرلی میں کہا جتنا گیان رتن یہاں اکٹھا کیا اتنا وہاں سول رتن ملیں گے آپ کو. تو سو پروشارتھ دوارا پراربدھ کا کھاتا ستیوگ اور تریتا یوگ میں کام آنے والا ہے. وہاں ایک ایک جنم کا سٹیٹس فائنل کریں گے ہم سو پروشارتھ دوارا. اسی لیے پریکٹیکل برہما بابا نے, مما نے بھی, یہ نہیں تھا بابا کے من میں کبھی بھی کہ بھئی میں تو شیو بابا کا رتھ ہوں اسی لیے مجھے سہجتا سے مل جائے گا. نہیں, بابا نے بھی ایک ایک بات کا پروشارتھ کیا اور پریکٹیکل بچوں کے لیے ایگزامپل بنے. تو سو پروشارتھ دوارا پراربدھ کا کھاتا یہ ستیوگ اور تریتا یوگ میں کام آتا ہے. اور سیوا دوارا جو پنیہ کا کھاتا ہے وہ دواپر کلیوگ میں کام آئے گا. 63 جنم اس پنیہ کے بیسس پر ہمیں ایک ایک جنم ملے گا. اسی لیے بابا نے کئی بار مرلی میں کہا ہے کہ جو یہ سنسکار یہاں سے دھارن کریں گے ہم سیوا کرنے کا بھی, تو دواپر کلیوگ میں دان کر کے پنیہ کماتے ہیں یا سیوا کر کے پنیہ کماتے. اس لیے کئی سوشل آرگنائزیشنز جو دنیا میں ہیں وہ سیوا کے سنسکار یہاں والے ہیں. جو یہاں کے سیوا کے سنسکار ہیں اسی سے 63 جنم ہم نے چلایا. جیسے بابا کہتے ہیں کہ کئی بار کوئی اگر ہاسپٹل میں دان کرتا ہے تو دوسرے جنم میں ہیلتھ اچھی ملتی ہے, ایجوکیشن میں دان کرتا ہے تو اچھے دماغ ملتا ہے. تو وہ 63 جنم جو چلا اسی بیسس پر چلا, دان کر کے یا سوشل کاریہ کر کے یہ کرا. لیکن جو سیوا کرتے ہیں ہم, یہ کتنے پرکار سے جو سیوا کیا, تن من دھن سمے سواس شکتی منسا واچا کرمنا, یہ جتنے بھی طریقے سے ہم نے سیوا کیا یا اس کو سفل کیا, وہ سنسکار جب آتما لے جاتی ہے تب وہاں وہ دان کر کے پنیہ کما کر کے اس جنم کو چلاتی ہے. اسی لیے یہ سیوا کرنا بھی آوشک ہے کیونکہ یہی بیسس بن جاتا ہے وہ 63 جنم. آپ سوچو کہ بابا کا گیان ملنے سے پہلے کا جنم کیسا تھا. بابا کا گیان ملا, یہ لاسٹ برتھ بھی کیسا تھا؟ دنیا کے آتماؤں کے حساب سے بہت اچھا تھا. اتنی اچھی بدھی تھی جو بھگوان کو تو پہچان سکے. ودوان ہیں دنیا کے لوگ لیکن پھر بھی ان کے پاس وہ بدھی نہیں جو بھگوان کو پہچان سکے. اور بابا کے بچے سادھارن ہوں گے, ان پڑھ ہوں گے, لیکن بھگوان کو پہچاننے کی بدھی ہے. تو اتنی اچھی بدھی لاسٹ جنم میں بھی تو ہے. تو 63 میں دواپر کے پہلے جنم میں کتنی اچھی بدھی ہوگی سوچو. اچھا, دنیا کے حساب سے چریتر اتنا اچھا تھا, چریتر اچھا تھا تبھی تو بابا کا گیان نے آکرشن کیا. اور یہاں چریتر نرمان ہو رہا ہے, یہ شروع کر دیا پروشارتھ ہم نے, اسی لیے تو بابا کے پاس آئے. آج دنیا کی آتماؤں کا چریتر دیکھو کیسا ہے, تو لاسٹ جنم میں بھی اتنا اچھا چریتر ملنا, اس سے بڑا بھاگیہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہاں جو جمع کیا ہوا ہے وہ 63 جنم کھا رہے ہیں. 63 جنم تک لاسٹ کلیوگ کا لاسٹ جنم کا بھی کوالٹی اتنا اچھا ہے, بھلے دھن نہیں ہوگا, بھلے چیز نہیں ہوں گی, سادھارن ہوں گے, لیکن جیون کی کوالٹی, وچاروں کی کوالٹی تو اچھی ہے. آج لوگ ڈپریشن میں پڑے ہیں دنیا کے اندر, और बाबा के बच्चों को देखो, कोई डिप्रेशन में है ना? तो लास्ट जन्म में विचारों की क्वालिटी इतनी अच्छी है हमारी, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो ये संगम युग में जो पुरुषार्थ किया है, तो पूरा 84 जन्म हम खा रहे हैं, इतना जमा करना है ना? तो 63 जन्म के जो पाप कर्म किए हैं, विकर्म किए, उसको चुकतु भी करना है और जमा भी करना है 84 जन्म का। और अभी तक बुद्धि अगर बाहर मार्केट में भटक रही है तो कब करेंगे, सोचने की बात है ना? सोचने की बात है। इतना अगर जिसके ऊपर काम का बोझा हो तो लास्ट मोमेंट उसकी क्या स्थिति होगी, फिर सोचने की बात है। जमा कुछ किया ही नहीं, माना इतना उतारना है कर्जा और 84 जन्म तक का जमा करना है, तो ये दो खाते भरपूर चाहिए तब हो सकेगा। और तीसरा खाता, श्रेष्ठ कर्म करके अनेक आत्माओं को सुख देते हुए दुआओं का खाता जमा करना, ये भी कहां काम आएगा? ये दुआओं का खाता कहां काम आएगा? अंतिम परीक्षाओं में, विनाश के पहले अंतिम परीक्षाएं जो चारों ओर से आएंगी, शारीरिक कर्म भोगना के हिसाब से भी आएगी, तो संबंध संपर्क में संस्कारों के टकराव के हिसाब से भी आएंगी। हम किसी से टक्कर खाने नहीं जाएंगे, लेकिन लोग हमसे टक्कर खाएंगे, उसका क्या है ना? उसको भी तो संभालना है। लोग टक्कर खाने वाले टक्कर खाने आएंगे, लेकिन मेरी अगर तैयारी है तो मैं उसको भी हैंडल कर सकूं, उस टकराव को भी। तीसरा, परिस्थितियों का, समस्याओं का ये कोना भी तो आएगा, नेचुरल कैलामिटीज का ये कोना भी तो आएगा है ना, इविल आत्माओं का अटैक ये भी तो कोना आएगा। तो इसीलिए दुआओं का खाता, जिसके पास दुआओं का खाता भरपूर होगा, तो अंतिम समय के चारों ओर के पेपर में मक्खन से बाल की तरह निकल जाएंगे, या पानी पर लकीर की तरह निकल जाएंगे। इसीलिए ये तीनों खाते भरपूर चाहिए, ये तैयारी जरूरी है। और ये तैयारी अगर नहीं किया है, ये तीनों खाते जमा के हमारे पास नहीं है, तो फिर जो मिला उसी को स्वीकार करना पड़ेगा, जिसके लिए बाबा ने कहा अंतिम समय उन आत्माओं को पश्चाताप के आंसू, संडे की मुरली याद करो, पश्चाताप के आंसू, पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। चार आग बताई ना बाबा ने अव्यक्त मुरली में, संडे की मुरली में, तो पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा कि अरे मेरे पास समय था, सब कुछ था, लेकिन अब समेटना है। इसीलिए जो कहा, विनाश की आग, विकारों की आग, देह और देह के संबंधों के आग और पश्चाताप की आग में भी, ये चारों प्रकार की आग का सामना करने के लिए दुआओं का खाता एक ही वो शीतलता का अनुभव कराएगा। जितना हमारा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ कनेक्शन पावरफुल होगा, उतना शीतलता प्रदान होगी, उतनी शीतलता की अनुभूति होगी कि ये आग में हमें जलना नहीं पड़ेगा। दुआओं का खाता ये शीतलता का अनुभव कराएगा, क्योंकि उसी को बाबा का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना? जाने से पहले तीनों सर्टिफिकेट हमें प्राप्त करना है। जिस तरह दुनिया में कोई विदेश में जाता है, वीजा जरूरी है, तब तक जा नहीं सकता है, फिर परम धाम में अटकना पड़ेगा, या परम धाम तक जाने के लिए भी धर्मराजपुरी में अटकना पड़ेगा, है ना? वीजा ही नहीं है। तीनों सर्टिफिकेट चाहिए, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, परिवार मुझसे संतुष्ट, ये ब्राह्मण परिवार भी या जो भी संबंध संपर्क में सभी मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट देवे और बाबा मुझसे संतुष्ट, ये तीनों सर्टिफिकेट होंगे तब पास विथ ऑनर के धर्मराज के पास भी सलामी मारते हुए निकल जाएंगे परमधाम, वहां भी अटकन नहीं होंगी। लेकिन जिसके पास ये तीनों सर्टिफिकेट नहीं है उसका हाल क्या होगा, रिटर्न जर्नी में कितना पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते रिफाइन नहीं हुए तो फाइन भरना पड़ेगा, तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी परमधाम जाने के लिए भी कि भाई रिटर्न टिकट तो तुमने लिया ही नहीं है, या लिया तो ये तो सब पूरा है ही नहीं। इसीलिए हम सोचते रहे कि हमारी रिटर्न टिकट कंफर्म हो गई है लेकिन कंफर्म हुई नहीं लास्ट तक, तो पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी, फाइन तो भरनी पड़ेगी। और तब तक वहां समय तो निकल जाएगा, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। सतयुग चालू हो जाएगा, वो आत्माएं नीचे उतर आएंगी, है ना, फिर त्रेता युग, तब तक हम पेनल्टी भर रहे हैं और त्रेता युग भी पूरा हो गया तो मैं कहां आऊंगी। तो इसीलिए मुझे इतनी पेनल्टी न भरना पड़े कि वो पेनल्टी भरने के बाद परमधाम में जाके रेस्ट करना पड़े और फिर नीचे आऊं तो नीचे समय पूरा हो गया, सतयुग में भी नहीं आ सके, त्रेता के भी अंत में आना पड़ा। भाई एक बार ज्ञान लिया है तो आएंगे तो जरूर स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में भी कौन सी क्वालिटी का जन्म मिला ये देखना है। पेनल्टी भरते भरते क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ हो गई। तो इसीलिए जैसे दुनिया में कहते हैं लोग श्री कृष्ण के भी भक्त है, श्री राम के भी भक्त है, शायद दुनिया में आज श्री राम के भक्त ज्यादा होंगे, लेकिन आज किसी को भी अगर पूछा जाए राम सीता बनेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं, राम सीता के भी बहुत सारे भक्त हैं, कोई कम है क्या। लेकिन फिर भी वो नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण की दुनिया से, सतयुगी दुनिया की क्वालिटी से त्रेता युग की क्वालिटी फिर भी दो कला कम हो गई। तो चाहिए तो हर एक को संपूर्ण चाहिए, दो क्वालिटी, दो डिग्री कम भी नहीं चाहिए हमको। तो जब नहीं चाहिए तो कितना जमा करना पड़ेगा तब जा करके उस दुनिया में जा सकेंगे। तो उसकी तैयारी अगर यहाँ ही नहीं हुई है हमारी, तो इसीलिए बुद्धि योग अभी बाहर की दुनिया से समेटते हुए आत्मस्थिति में है, आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल हमारी बना दे, हम हर बात में ये पाठ इतना पक्का हो हमें। बाबा रोज रोज हमें पाठ पक्का करा रहे हैं, आत्म समझ करके मुझे याद करो बच्चे, आत्म समझ करके याद करो मन मना भव। और हम यही हिसाब लगाने में लगे हुए हैं कि बाबा ये बात पूरी हो जाए, ये जिम्मेवारी मेरी पूरी हो जाए, उसके बाद बस आपको याद करना और कुछ नहीं करना, है ना। अरे बाबा को याद करो तो जिम्मेवारी भी सहजता से पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए हम यात्रा पर है और यात्रा पर अनेक साइड सीन तो आती जाएगी, आप चलते चलो सीन चली जाएंगी, समाप्त हो जाएगी और आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाओ, प्राप्त कर लो। ये है रिटर्न जर्नी के लिए अपनी तैयारी करना। जो आत्मा संपूर्ण सतो प्रदान, सातों गुणों से भरपूर, कम से कम ये पुरुषार्थ करते हुए मैं अपने आप को इतना श्रेष्ठ पावन बना दूं, अब फिजूल के जो संस्कारों की टक्कर में नहीं जाना है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मन मत, पर मत, इन सब बातों के उसमें नहीं जाओ अभी, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी पर है तो अब श्रीमद क्या कहती है उस पर फोकस करना है और श्रीमद के आधार पर हमारे हर कर्म हो। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, उसका कर्म वो जाने, उसका कर्म उसको नहीं छोड़ेगा, धर्मराज उसको मैं कौन होता हूँ इस समय जज बन करके उसके कर्मों का, भाई उसने ऐसा नहीं करना चाहिए ना उसने कहा। जिसने जो किया उसके कर्म उसके सिर माथे, जैसे कहते हैं कि भाई जानवर के सिंह उसको भारी होते हैं, ठीक इसी तरह हाँ भाई उसके सिंह है, उसके सिंह है, उसके पीछे मैं क्यों चिंता करूं। अगर उसके कर्म गलत है, अगर उसके कर्म में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है, तो वो जाने, धर्मराज जाने, हाँ उसके कर्म वो अपने आप चुकाएगा। मैं जज बनकर के उसके कर्मों में भागीदारी क्यों बनाने जा रहा हूं? ये समझदारी तो नहीं है कि उसके कर्मों का चिंतन करते हुए मैं उसके कर्म में पार्टनरशिप बना लूं। अब रिटर्न जर्नी उसके कर्म में पार्टनरशिप बनाने का परवड़ता है क्या? नहीं परवड़ता है। इसीलिए उसके कर्म वो जाने, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके कर्म वो जाने, उसके सिंह उसको भारी है ना, धर्मराज जाने, वो जाने, उसका हिसाब किताब वो अपना जाने, मैं उसके साथ पार्टनरशिप बनाना नहीं है। इसीलिए किसी का चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, उससे अपनी बुद्धि को समेट लेना है और स्वचिंतन, शुभ चिंतन करते हुए दूसरों को भी शुभ भावना का दान देते हुए, शुभ कामना रखते हुए हम अपनी जर्नी में आगे निकलते जाए। ये साइड सीन में मुझे फंसना नहीं है, ठीक है? तो ये रिटर्न जर्नी की तैयारी हमें करनी है। अच्छा, ओम शांति।
गुजरते जा